थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओ, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्गमन। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुने ये मधुर गीत।
पाया है, खिल गई है कलियां नई,
से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है
जिंदगी मेरी,
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 जिंदगी मेरी।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब प्रभु के अनुग्रह के द्वारा कुशल पूर्वक होंगे और आज भी प्रभु के जीवित वचनों में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं फिर से आप सभी नए और पुराने श्रोताओं का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यह कार्यक्रम आपको अवश्य ही आत्मिक लाभ प्रदान कर रहा है। मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि जब आप इस कार्यक्रम को सुनकर आशीष पाते हैं तो इसे अपने मित्रों को भी अवश्य बताएं, ताकि वे भी प्रभु के वचन को सुनकर अपने जीवन में आत्मिक आशीष को प्राप्त कर सकें, एवं हमें भी अपने आशीषों को पत्र या फोन के द्वारा से अवश्य बताएं। मित्रों, आज के अध्ययन को आरंभ करने से पहले आइए हम पिछले अध्ययन को फिर से एक बार देख ले, जो आज के अध्ययन के लिए सहायक होगा। पिछले अध्ययन में हमने इसराइल के पहलौठों का परमेश्वर को अर्पण करना, मूसा द्वारा यूसुफ की हड्डियों को प्रतिज्ञा के देश में ले जाना और इसराइलियों का बंजर भूमि में से होकर यात्रा करना और लाल सागर के तट पर पहुंचना आदि विषयों को देखा था। आज हम इस अध्ययन में परमेश्वर द्वारा इसराइल के संतानों को मिस्र की प्रजा और फिरौन से छुड़ाए जाने और परमेश्वर की सामर्थ द्वारा लाल सागर पार करने के दृश्य को देखेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमें दिया है, ताकि प्रभु हम आपके जीवित वचन को रेडियो के माध्यम से सुन सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, आपके वचन में से मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए, पिताजी आप हर एक के आत्मिक आंखों को, उनके हृदयों को, उनके विचारों को, उनके एकाग्रतापन को खोल दें, ताकि प्रभु जब वो आपके वचन को सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के हृदय से बातचीत करने पाए। जो अशांति में है, जो परेशानी में है, जो चिंता और तकलीफ में है, प्रभु आप उनके जीवन में इन वचनों के द्वारा से अपनी शांति दे दीजिए, ताकि वे जान पाए कि आप सामर्थी परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और सहायता देने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? मित्रों, यह व्यंगात्मक कथन है और मुझे विश्वास है कि उस समय इससे और भी ज्यादा कुछ कहा गया होगा। राजा के कब्रिस्तान पर विशाल पिरामिड स्मारक के रूप में बने थे। मिस्र में मम्मी हर क्षेत्र में थे। यह विशाल कब्र वाला स्थान था और इसराइल के संतान कह रहे थे कि क्या तू हमें इस स्थान अर्थात निर्जन स्थान में मरने के लिए ले आया है, क्योंकि मिस्र देश में हमें दफनाने के लिए जगह न थी। मित्रों, इसराइली सोचते हैं कि अब वे इस निर्जन प्रदेश में मर जाएंगे। तब हम आगे पढ़ते हैं निर्गमन 14 उसके 12 पद में, क्या हम तुझसे मिस्र देश में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी ही अच्छी थी। इसराइली लोग मिस्र देश में छुटकारे के लिए पुकार रहे थे और परमेश्वर ने उन्हें अवसर दिया कि वे छुड़ाए जाएं, और जैसे ही वे एक पल के लिए मुसीबत में पड़े तो वे मिस्र में वापस लौटना चाहते थे। मित्रों, ध्यान दें कि अब परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं। वे लोग बिना परमेश्वर के असहाय और आशाहीन हो गए थे, और यदि उन्हें छुड़ाना है तो परमेश्वर को ही कुछ करना था। मेरी इच्छा है कि काश हम मन में उस विषय के विचारों को आज हमारे लिए ला पाते, क्योंकि हम भी बिल्कुल इसराइलियों की तरह ही हैं। यदि हम खगोल शास्त्रियों के साथ चांद पर जा सकते और वहां से अपनी इस छोटी धरती को देखते तो हम देख पाते कि लोग पाप में खोए हुए हैं। वास्तव में हमारी संसार एक सुंदर असहाय स्थान है, एक विशाल कब्रिस्तान है। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसके 12 पद में पौलुस कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया है। मित्रों, मनुष्य 5000 वर्षों से भी अधिक समय से यात्रा में है, परंतु वह कहां जा रहा है? वह कहां जाने की तैयारी कर रहा है? मनुष्य कब्र की ओर जा रहा है। और मित्रों, यह सुनने में अच्छा नहीं लगता है, परंतु यही सच है। मनुष्य परमेश्वर के ब्रह्मांड में सबसे असफल व्यक्ति है। हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर का मिस्र पर विजयी होना। मित्रों, यहाँ पर इसराइलियों के संतानों को देखिए, जब तक परमेश्वर उनकी ओर से नहीं चला तो वे अंधियारे या विनाश में ही थे, और मैं और आप भी कभी नहीं छुड़ाए जा सकते थे जब तक कि इसे परमेश्वर ने न किया होता, क्योंकि छुड़ाना परमेश्वर का काम है। योना नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, उद्धार परमेश्वर का है। मित्रों, राजा दाऊद ने भी इसी कथन को कहा था, और वह नया नियम का भी संदेश है। निर्गमन 14 उसके 13 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। मित्रों, प्रभु अपने लोगों की ओर से काम करेंगे, और लोगों को सिर्फ इतना काम करना है कि वे उसके उद्धार को लें और स्वीकार करें। उन्हें सिर्फ स्थिर खड़ा होना है और परमेश्वर के काम को देखना है, और परमेश्वर काम करेंगे। मित्रों, इस बात को याद रखें कि आप अपनी छोटी अंगुली को भी अपने उद्धार के कार्य के लिए नहीं उठा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपने उद्धार की प्राप्ति के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए किया उसे आपको स्वीकार करना है। हम निर्गमन 14 उसके 14 पद में पढ़ते हैं, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मित्रों, परमेश्वर अपने लोगों का उद्धार करेगा और पापों की क्षमा द्वारा उन्हें शांति देगा। हम निर्गमन 14 और उसके 15 और 16 पद में पढ़ते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इसराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुन्द्र के ऊपर बढ़ा, और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इसराइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल चले जाएंगे। मित्रों, हम देखते हैं कि इसराइलियों को स्थिर खड़े रहकर परमेश्वर के उद्धार को देखना है, परंतु जब वह कहता है कि उन्हें उसकी आज्ञा का पालन विश्वास के द्वारा करना है, और उनका विश्वास ही इस बात का सबूत होगा कि वे आगे जा पाएंगे या नहीं। मित्रों, लोगों के द्वारा कई व्यवहारिक व्याख्याएं दिए गए हैं कि कैसे इसराइलियों ने समुद्र को पार किया। उनमें से पहला, मैं विश्वास करता हूं कि यह प्रसिद्ध लोगों, इतिहासकारों और धर्म विज्ञानियों के द्वारा अच्छी तरह बताया गया है कि इसराइल का प्रस्थान एक ऐतिहासिक सत्य है। बहुत से लोगों को समस्या तब होती है जब वे यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसराइली लाल सागर के पार गए। कुछ लोग कहते हैं कि हवा पानी को पीछे की ओर बहा ले गई, परंतु वहां पर दोनों तरफ पानी की दीवार खड़ी थी। और कुछ अन्य कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण समुद्र का पानी पीछे हट गया था। कुछ और लोगों का कहना है कि जब वे सागर के किनारे जाने की तैयारी कर रहे थे उसी समय भूकंप आया था। मित्रों, यहां पर किसी एक चीज का होना आवश्यक था, और वह एक चमत्कार था, और ऐसा हुआ भी। आप इसे स्वीकार करें या ना करें, परमेश्वर ने चमत्कार द्वारा सागर को खोल दिया, अर्थात 2 भाग में बांट दिया, और इसराइली सूखी भूमि में से होकर चले गए। जब वे सागर पार करके उस पार पहुंचे तो वे सूखी भूमि पर पहुंच गए थे। वहां पर इतना भी पानी नहीं था कि उनके पैरों को भिगा सके या गीला करे। मित्रों, इस स्पष्ट चमत्कार को छोड़कर इसका वर्णन करना बहुत कठिन है। हम निर्गमन 14 उसके 17 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं, और वे उनका पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी। यदि आप पानी के तट पर उस समय गए होते जब फिरौन इसराइलियों का पीछा लाल समुद्र के उस पार तक करना आरंभ कर रहा था, तब आप उससे कहे होते, मुझे लगता है कि आप यह जानते हैं कि आप ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के द्वारा आपके और आपके लोगों के हृदय कठोर कर दिए गए हैं, और आप वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि आपके इस कथन पर फिरौन और उसकी सेना हंसती और जवाब देती, हम इसराइलियों का पीछा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनका पीछा करना चाहते हैं। मित्रों, सच बात तो यह है कि परमेश्वर ने मिस्रियों को बाध्य किया है कि वे उस कार्य को करें जो उनके हृदय में है। हम निर्गमन 14 अध्याय उसके 18 से 21 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब परमेश्वर का दूत जो इसराइली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इसराइलियों की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार तो हुआ तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे वे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। मित्रों, इस भाग में बहुत सी बातें ध्यान देने योग्य है। सबसे पहले 18 पद में उन मिस्रियों का जिक्र किया गया है जो मिस्र देश में पीछे छोड़ दिए गए थे। इसराइली सुरक्षित रीति से लाल सागर के दूसरे तरफ पहुंच जाएंगे और फिरौन और उसकी सेना सागर में डूबकर नाश हो जाएंगे और मिस्र देश में बचे हुए लोग जान लेंगे कि इसराइलियों का परमेश्वर ही प्रभु है। और पद 19 में परमेश्वर का दूत का जिक्र हुआ है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का दूत कोई और नहीं परंतु यीशु है जो अवतरित होने से पहले थे। यह स्वयं परमेश्वर था जो मिस्रियों और इसराइलियों के बीच खड़ा हुआ था। जब प्रचंड पुरवाई आई तो वह सागर को पीछे ले गई। मित्रों, एक सामान्य हवा या आंधी कभी भी सागर के दोनों तरफ पानी का दीवार नहीं बना सकती थी। हम निर्गमन 14 उसके 22 से 25 पद में आगे पढ़ते हैं जहां पर लिखा हुआ है, तब इसराइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिने और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के पीछे में चले गए। और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इसराइलियों के सामने से भागें क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। मित्रों, जब परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने की योजना करते हैं तो हम फिर से देखते हैं कि वह आग और बादल के खंभे में होकर काम करते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि यह पवित्र आत्मा को दर्शाता है जैसा कि वह आज भी करता है। आप पवित्र आत्मा को आज भी आग और बादल में होकर चित्रित होते हुए पाएंगे। मित्रों, इसराइली लोगों की अगुवाई की गई जैसा कि आज भी परमेश्वर के संतानों की अगुवाई परमेश्वर के आत्मा ही के द्वारा होता है। मिस्रियों को यह स्पष्ट हो गया था कि जो भी हो रहा है उनके साथ यह निश्चित रूप से अलौकिक है। वे पीछे हटना और ताकत से भागना चाहते थे जो उनके विरुद्ध थी। हम आगे पढ़ते हैं निर्गमन 14 उसके 26 से 28 पद में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों अपने बल पर आ गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इसराइलों के पीछे समुद्र में आए थे सो सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें एक भी ना बचा। मित्रों, इन पदों को ध्यान से देखने की आवश्यकता है क्योंकि यह एक चमत्कार है और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसका व्याख्या करने का कोई भी प्राकृतिक तरीका नहीं है। कई रूढ़िवादी लोग हैं जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास किए और मसीह में विश्वास मात्र से बचाए गए। उन्होंने लाल सागर को पार करने के बारे में प्राकृतिक तरीके से व्याख्या करने की कोशिश की है और जब आप लेख को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसकी व्याख्या प्राकृतिक तरीके से करना असंभव है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि यह एक चमत्कार है चाहे आप इसे माने या ना माने। हम निर्गमन 14 उसके 29 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु इसराइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिने और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। मित्रों, ये दोनों पद हमें इसराइल को छुड़ाने के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को बताते हैं। उनकी निर्जन की यात्रा के आरंभ में ही उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ को देखा जब उसने उन्हें लोहू के द्वारा मिस्र से छुड़ाया था। अब लाल सागर के निकट में अपनी सामर्थ को फिर से उन्हें सागर के उस पार सुरक्षित ले जाने और मिस्रियों की सेना से जो उनका पीछा कर रही थी नाश करने के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। परमेश्वर ने अपने संतानों को सामर्थ के द्वारा छुड़ाया है। मित्रों, आज हमने इस अध्याय में देखा है कि इसराइली मिस्र की गुलामी में फंसे हुए थे और उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और उसने उन्हें मिस्र से छुटकारा दिलाया। वे अब गुलामी से स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन क्या आप अपनी पाप की गुलामी से, बुराइयों से, बुरी आदतों से छुटकारा पा चुके हैं? यदि आज आप भी पाप की गुलामी में जीवन जी रहे हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज आप भी परमेश्वर को पुकार सकते हैं, जिस प्रकार से इसराइलियों ने उसे पुकारा और उसने उन्हें छुटकारा दिया। वही परमेश्वर आपको भी आपके पापों के बंधन से छुटकारा दिलाएंगे। आप उस पर विश्वास करें और अवश्य ही पुकारें, जैसा कि इसराइलियों ने किया था। मित्रों, याद रखें कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने भी एक बड़ी समस्या लाल सागर और फिरौन की सेना की तरह आएगी, लेकिन आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है कि वह आपके लिए सूखी भूमि निकाल सकते हैं और आपको सुरक्षित अनंत जीवन में पहुंचा सकते हैं। आज आपको निर्णय लेना है कि क्या आप पाप की गुलामी से छुटकारा पाना चाहते हैं या पाप में जीवन जीना चाहते हैं। याद रखें कि कोई भी मनुष्य की ताकत आपको नहीं छुड़ा सकती है, सिर्फ प्रभु यीशु ही एकमात्र उद्धारकर्ता है जो आपको पाप से छुटकारा दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मरे और तीसरे दिन जी भी उठे, लेकिन दूसरा कोई भी नहीं है जो आपके लिए मरा और जी उठा। सिर्फ यीशु ही जीवित और विजयी परमेश्वर है। आज आपको फैसला करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहीं पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आप इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किए हैं, क्योंकि यह आत्मा के लिए ही है जो बहुत बहुमूल्य है। कृपया आप हमें अपनी गवाही व आशीष लिखकर अवश्य भेजें, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे और सहायता करें।
श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, हो गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। उसकी भक्ति जीवन की है भलाई, उसकी महिमा उसकी भक्ति जीवन की है भलाई, शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई, शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, ओ यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, गाते जाओ मिलके प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलके प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, 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 यीशु के गुणगान, यीशु के गुणगान, यीशु के गुणगान, यीशु के गुणगान।